अध्याय 10 ग भृगु अंगिरस परंपरा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में भृगुअंगिरस वंश का विशेष योगदान रहा है। ऋग्वेद में ऋषि कवि विभिन्न प्रकार से उल्लिखित हैं। यह वहां कारु तथा कारीन रूप में वर्णित है, जो संस्कृत के क्री धातु संपादन अर्थ में प्राप्त है। कवि शब्द संस्कृत के क्री धातु बोलने के अर्थ में प्रयुक्त है तथा ऋषि गति अथवा गीतों के प्रवाह के रूप में मान्य है। कारु एक व्यवसायी व्यक्ति होता था। वह राजकीय परिवार से संबद्ध था और राजकीय पर्यावरण में रहता था। इस कारु में कविता विशेषतः ऋषि वर्ग से संबद्ध थी। यद्यपि राजकीय पर्यावरण में रहने वाले व्यक्तियों ने भी काव्य प्रतिभा को प्रकट किया है, परंतु विभिन्न अवसरों पर इन कवियों को अपने राजकीय संरक्षकों के प्रशंसात्मक रचनाएं करने पड़ते थे। डॉक्टर पाठक ने वैदिक काल में विशेषतः ऋषियों के तीन परिवारों को इससे संबद्ध किया है। वशिष्ठ और विश्वामित्र भरत राजाओं के ऋषि पुरोहित थे और कर्ण यदुओं तथा पराश्वों तथा पुरुओं से संबद्ध थे। भारद्वाज दियोदास के ऋषि थे, परंतु कालांतर में भारद्वाजों का संबंध संजयों से हो गया, जो भरतों के संबंधी थे। लघु परिवारों में कवश कुरुओं के पुरोहित थे, जबकि भृगु दुहियों के साथ उल्लेखित हैं और वे संभवतः मानवों के राजपुरोहित थे। भरतों की प्रारंभिक ऐतिहासिक परंपरा प्रारंभ में भारद्वाज तथा विश्वामित्र के अंतर्गत विकसित हुई। कालांतर में वशिष्ठ परिवार इस पर प्रभावी हो गया। अनेक मंत्रों में वशिष्ठ ने सुदास के विरोचित कार्यों को संपन्न किया। पराशर तथा सतयातु वशिष्ठ परिवार के थे, जो भरत राजाओं से संबद्ध थे। पराशर या तो वशिष्ठ का पुत्र अथवा पौत्र था, जबकि सतयातु वशिष्ठ का बंधु था। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति का उल्लेख उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में प्राप्त है। पराशर के वंशकर व्यास का उल्लेख तैतृय आरण्यक तथा साय विघटन ब्राह्मण में हुआ है। अतः पराशर के काल तक पृष्ठ संख्या 149 वशिष्ठों का संबंध भरत परिवार के साथ निःसंदेह बना हुआ था। परंपरा अनुसार पराशर के वंशकर व्यास को भरत आख्यान के रचना का श्रेय दिया जाता है। कालांतर में भरतों के कुरु पांचालों में सम्मिश्रित हो जाने से वशिष्ठों का प्रभाव समाप्त होने लगा और अंततः ऐतिहासिक परंपराओं के रचना कार्य का स्थानांतरण दूसरे ऋषि परिवारों को हो गया। भरत परिवार के दियोदास के पुरोहित भरद्वाज थे, परंतु सुदासों के काल में भरद्वाजों का संबंध भरतों की संबंधियों संजयों से हो गया। पायु भरद्वाज ने अस्वस्थ संजय को अपना संरक्षक स्वीकारा है। बृहद्देवता में उसे प्रस्तोक निर्माण का श्रेय दिया गया है, जो उसी परिवार का राजा था। कण्व भी एक प्रसिद्ध परिवार का था, क्योंकि वत्स कण्व ने एक मंत्र में परशु परिवार के तिरिंदर के सम्मान में मंत्रों की रचना की है। इस संबंध की परंपराओं से पुष्टि प्राप्त होती है। जैसा कि शांखायन सूत्र में वत्स को पार्श्व नरेश तिरिंदर का पुरोहित लिखा है, उसका संबंध पुरुत्रसदस्यु के साथ ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। इसका संबंध यदुओं और तुखसुओं से भी था। ऋग्वेद के उत्तरकालीन स्तरों से यह स्पष्टतया संकेतित है कि ऐतिहासिक परंपराओं पर कण्व का प्रभाव बढ़ रहा था। ऋग्वेद के आठवें मंडल में प्रगात तथा दान स्तुतियों के विशेषीकरण में इनका योगदान है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि कण्वों का विशेष संबंध गाथाओं से था, कालांतर में इन तीन परिवारों की परंपरा अंगिरसों के अधीन दिखाई देती है। जैसा कि ऋग्वेद के विभिन्न संदर्भ अंगिरसों से संबंधित है, जिनकी रचना कण्व तथा भरद्वाजों ने की थी। निसंदेह भृगुओं का संबंध इस ऋषीय समन्वित संस्कृति से संबद्ध है। उत्तर वैदिक काल में अंगिरसों का परिवार, अथर्वों का परिवार तथा भृगुओं का परिवार परस्पर निमज्जित होकर एक शक्तिशाली भृगुअंगिरस समूह में परिवर्तित हो गया। भारतीय इतिहास शास्त्र हिस्टोरियोग्राफी में इन तीनों परिवारों का एक में सम्मिश्रित होना एक महत्वपूर्ण और विचारणीय घटना हुई। एकीकरण की यह प्रक्रिया वैदिक काल में प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि इन तीनों परिवारों का एक साथ उल्लेख ऋग्वेद में अथवा अथर्वणों के साथ भृगुओं का उल्लेख तथा अंगिरसों के साथ तीनों परिवारों का एकीकरण दिखाई देता है। जो एकीकरण की प्रक्रिया ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ हुई वह कालांतर में अथर्व वेद में विकसित हुई, क्योंकि अथर्व वेद को अथर्वांगिरस तथा भृगुवांगिरस का वेद कहा जाता है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय का मत है कि अंगिरस अंत का संबंध कृत्या विधि के साथ होने पृष्ठ संख्या 160 से वैदिक धारा में यह दूसरी धारा अथर्वांगिरसों की थी। वह तीनों नामों का अंतः संबंध यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में प्रवहमान है। कालांतर में शतपथ ब्राह्मण में भार्गव अथवा अंगिरस का संबंध च्यवन से संबंध दिखाई देता है। भृगु के जन्म के विषय में विभिन्न मत प्राप्त हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में आदित्य तथा अंगिरा के साथ भृगु की उत्पत्ति प्रजापति से हुई। गोपद ब्राह्मण में ने भृगु और अंगिरा का जन्म ब्रह्मदेव से लिखा है, इससे भृगु तथा अंगिरा का परस्पर संबंध स्वाभाविक है। शतपथ ब्राह्मण तैत्रीय आरण्यक तैत्रीय ब्राह्मण के अनुसार वरुण के पुत्र प्रतीत होते हैं, क्योंकि जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में तैत्रीय उपनिषद ब्राह्मण में वरुण के द्वारा भृगु का ज्ञानोपदेश वर्णन मिलता है। वरुण पुत्र होने के कारण वारुणी शब्द उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिन्हें अनेक सूक्तों का ऋषि होने का गौरव प्राप्त है। अथर्ववेद के संकलन में भृगु का अत्यधिक योगदान है। अंगिरा तथा भृगु इन्हीं दोनों ऋषियों की प्रधानता इस वेद में दिख पड़ती है, इसलिए अथर्व का प्राचीन नाम भृगुवांगिरस है। भृगु पत्नी पौलोभी के पुत्र महर्षि च्यवन थे, जिन्होंने सम्राट सर्याति मानव का महाभिषेक कराया था। ऐत्रेय ब्राह्मण इस एकीकृत परिवार ने इतिहास पुराण परंपरा का उपवृहन किया। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अथर्ववेद इसी परिवार की रचना है, और इनका संबंध जिस प्रकार ऋक और ऋग्वेद से, यजुस का यजुर्वेद से और साम वेद से है, उसी प्रकार इतिहास पुराण का संबंध भृगुवांगिरस परिवार से है। छांदोग्य उपनिषद में यह स्पष्टतः उल्लेख है कि इतिहास पुराण पुष्प है और अथर्वांगिरस इसके मधुमक्खियां हैं। डॉक्टर पाठक भरत आख्यान का महाभारत में विकास भृगुवांगिरसों का कार्य मानते हैं। डॉक्टर सुकंठकर ने अपने अनेक निबंधों में भार्गवों को महाभारत के विस्तार का प्रयोजन हेतु माना है। महाभारत के अनेक संदर्भ भार्गवों से संबद्ध है। इतना ही नहीं, कुलपति शौनक स्वयं, जिनके सम्मुख महाभारत का कथन सूत उग्र श्रवणवश ने किया था, जो भार्गव थे, क्योंकि शर्याती पुत्री सुकन्या और च्यवन से ही जमदग्नि तथा परशुराम हुए। च्यवन पुत्र प्रमति और धृताची से रोम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और रोम की पत्नी प्रमदवरा थी, जिससे शुनक उत्पन्न हुए, और इन्हीं शुनक के पुत्र शौनक थे, जिनकी कृपा से महाभारत का प्रवचन हुआ। इतना ही नहीं, रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि भी भृगुवांगिरस थे। जैसा कि हरिवंश का कथन है कि राम के महानता की गाथाओं का संगायन पौराणिकों ने किया। महाभारत के शांति पर्व पृष्ठ संख्या 161 महाभारत के शांति पर्व में उल्लेख है कि भार्गवों द्वारा गाथाओं का विकास आख्यान में किया गया। रामायण के अंत साक्ष्य से संकेतित है कि इक्ष्वाकु परिवार के आख्यानों से ही रामायण का विकास हुआ। डॉक्टर पाठक ने वाल्मीकि को भार्गव स्वीकारा है, जो च्यवन के वंशकर थे। इस प्रकार भृगुवांगिरस परिवार के सदस्यों ने रामायण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारद्वाज, अंगिरथ, संवर्त, च्यवन, उष्णस, जमदग्नि तथा अन्यों से संबंधित आख्यान का उल्लेख रामायण में विभिन्न स्थलों पर हुआ, परंतु यह निश्चित रूप से नहीं स्वीकारा जा सकता कि राम से संबंधित आख्यानों का विकास भगवांगिरशो द्वारा ही हुआ और उन्होंने अपनी आख्यानों को रामायण की रचना में सुअनुप्रविष्ट किया। पौराणिक आख्यानों के विकास में भृगवांगिरसो का विचारणीय योगदान है। विभिन्न पुराणों में भार्गव आख्यान बिखरे हुए हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि पुराणों के प्रचार और प्रसार में भार्गव वंश का विशेष योगदान था। विष्णु पुराण के अनुसार पुराण मूलतः ऋषियों द्वारा रचित था और जिस प्रकार दधीची, सारस्वत, भृगु, वत्स आदि को हस्तांतरित किया गया, इसी प्रकार ऋषियों ने ऋभु, प्रियव्रत, भागुरी और भार्गव ऋषियों को पराशर के द्वारा हस्तांतरित किया। मार्कंडेय पुराण का कथन है कि च्यवन भार्गव द्वारा मार्कंडेय ऋषि को इसका ज्ञान हुआ जो भार्गव थे। इतिहास और पुराण ही नहीं अपितु अन्य ऐतिहासिक रचनाओं, आख्यान और आख्यायिका पर भी भृगवांगिरसो का प्रभाव परिलक्षित है। पतंजलि महाभाष्य में अष्टाध्यायी के भाष्य तथा काशिका का कथन है कि भार्गव राम का आख्यान भृगवांगिरसो की देन है। हर्षचरित के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि आख्यायिका का रूपायन ऐतिहासिक रूप में भार्गव की देन है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक काल से 7वीं शती ईस्वी तक ऐतिहासिक परंपराओं की रचना में भृगवांगिरसो का योगदान अधिक रहा है, जिसका ऐतिहासिक अनुक्रम डॉक्टर विश्वंभर शरण पाठक ने शोधपूर्ण प्रमाणों से प्रमाणित किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक परंपरा का प्रामाणिक रूप से प्रवर्तन का कार्य डॉक्टर पाठक द्वारा अत्यधिक श्रेष्ठ कार्य है। भृगवांगिरसो की ऐतिहासिक रचना परंपरा का प्रवर्धन सूतों द्वारा की गई जो राजकीय अधिकारी थे। सूत भी भृगवांगिरसो से ही उत्पन्न है। सूतों को विविध राज परिवारों की वंशावली की रचना का श्रेय है। भृगवांगिरसो तथा ब्राह्मण वर्ण के अन्य सदस्यों द्वारा संयोजित वंश ऐतिहासिक रचना का एक प्रतिनिधि अंग बन गया। ऐतिहासिक परंपरा के विकास का द्वितीय चरण राजकीय दरबारों के माध्यम से हुआ। पृष्ठ संख्या 162। विशेषतः पूर्व का मध्यकालीन चरित साहित्य की रचनाओं में द्रष्टव्य है। इतिहास और पुराण की ऐतिहासिक परंपरा का प्रसारांतरण राजकीय चरितों में इसलिए हुआ क्योंकि भृगवांगिरसो की स्थिति में परिवर्तन हो गया है। पूर्व मध्य काल में जब इतिहास की वीर परंपरा दरबारी परंपरा में परिवर्तित हो गई और भ्रमणशील सूतों और भृगवांगिरसो के स्थान पर वेतन भोगी दरबारी कवियों तथा संधि विग्रहों ने स्थान ले लिया, ये भी या तो स्वयं भृगवांगिरस वंश के थे अथवा उनसे निकट रूप से संबद्ध थे। पूर्व मध्य काल के प्रारंभ में ही भृगवांगिरसो को राजकीय संरक्षण प्राप्त होने लगा था। पूर्वी तथा मध्य भारत में वाल्क खानदेश के राजा भुलुंड, महिष्मति के राजा सुमंधु, तैकुटक नरेश, गुर्जर नरेश दत्त द्वितीय तथा इस क्षेत्र के अनेक राजाओं द्वारा इनको शशनस प्राप्त हुआ। हर्ष के मधुबन तथा बांसखेरा के दानग्रहिता भी भार्गव तथा अंगीश ब्राह्मण थे। त्रिपुरी के कलचुरी नरेश युवराजदेव प्रथम के अधीन भारद्वाज गोत्रीय एक अंगिरस ब्राह्मण भाकन मिश्र का प्रभाव सोमेश्वर चेदी राज्य के प्रशासन में था। वह कलचुरी नरेश का प्रधानमंत्री था। भान मिश्र के पुत्र सोमेश्वर को लक्ष्मण राज द्वितीय ने अधिक सम्मान दिया। भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण नामदेव कौशल के कलचुरी नरेश जाजल देव द्वितीय के पारिवारिक पुरोहित थे। भृगवांगिरसो की राजकीय संरक्षण परंपरा कालांतर में भी प्रचलित रही। भट्ट यशोधर चंदे धंग भट्ट भवदेव बंगाल के हरिवर्मन हलायुत लक्ष्मण सेन दकारी के ब्राह्मण विभिन्न राज्यों में गए और सम्मान प्राप्त किए। और इन्होंने राजकीय संरक्षण में इतिहास लेखन की परंपरा का विभिन्न रूपों में निर्वाह किया। राज दरबारों में रहते हुए इन्होंने वंश साहित्य का निर्माण किया, विशेषतः इक्ष्वाकु, एल, भरत तथा अन्य राजकुलों का जो प्राचीन काल में विद्यमान थे। ब्रह्म क्षेत्र परिवारों के अनेक भृगवांगिरस वंशीय लोगों ने अनेक राज्यों की स्थापना किया। वाकाटक, कदम्ब, चालुक्य के कुछ परिवार, चाहमान तथा दधीची आदि भारद्वाज, भार्गव तथा अंगिरस गोत्रों से संबंधित थे। इस प्रकार दरबारों में रचित वंश साहित्य कालांतर में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री बनी, जिसका श्रेय प्राचीन भारतीय इतिहासकार भृगवांगिरसों को है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में यह एक दीर्घ परंपरा में प्रचलित रही।